जूझते हुए मेरे युवा साथियों नमस्कार। आज 9 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं समीर कुमार सिंह मधुबनी बिहार से, अभय कुमार सिंह दरभंगा बिहार से, अनिल राजगर सादुलपुर राजस्थान से और मनोज कुमार शाह पूर्णिया बिहार से। तो समीर, अभय, अनिल और मनोज, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैंने थोड़ा सा हटकर विषय लिया है और आज का विषय है मुख्य परीक्षा 2017। हम इस पर कुछ बातें करेंगे। आइए थोड़ी सी एक निगाह डाल लेते हैं न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों, जहां तक रेडियो और दूरदर्शन की न्यूज का सवाल है, कोई बहुत ऐसी खबर नहीं है जिसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मान सकें। मूल केंद्र जो न्यूज का रहा है वो आप देख रहे हैं कि डी मोनेटाइजेशन के पक्ष और विपक्ष में एक तरीके से राष्ट्रीय बहस शुरू हो चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है, है ना। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो बहस पर ही आधारित एक तंत्र है जहां न तो हम सिर्फ सत्ता की सुनते हैं और न सिर्फ विपक्ष की सुनते हैं, दोनों की सुनते हैं और दोनों की सुनने के बाद फिर अपनी राय बनाते हैं कि सच्चाई क्या है और सच पूछे तो अपने अनुभव को भी उसमें शामिल करते हैं। तो न्यूज में भी आपने देखा, रेडियो न्यूज में भी उसी पर लेकर के बातें हो रही हैं, दूरदर्शन न्यूज पर भी उसी तरह से बातें हो रही हैं और ये बहुत ही स्वाभाविक है। मित्रों, कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे अवसरों को हमें उलट देना चाहिए, या उलट देना चाहिए नहीं कहें बल्कि ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि एक्सटेंड कर देना चाहिए। एक्सटेंड कर देने का मतलब ये कि अब हमारे लिए पूरी की पूरी बहस केवल डीमोनेटाइजेशन पर टिकी हुई बहस नहीं है कि विमुद्रीकरण के बारे में बातचीत हो रही है, बल्कि सच पूछे तो विमुद्रीकरण के बारे में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझ पा रहे हैं, उनकी चुनौतियां, उसकी चुनौतियां क्या क्या हैं वो देख पा रहे हैं, उन चुनौतियों के क्या समाधान हो सकते हैं इसे भी जान पा रहे हैं। तो यह एक व्यापक संदर्भ बन जाता है, तो आप इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में लीजिए, विस्तार के साथ देखिए, जिसे मैंने कहा कि इसे एक्सटेंड कर दीजिए। मित्रों, इस दूसरे पॉइंट्स के रूप में सीधे सीधे तो नहीं है, दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो आप देख रहे हैं और पिछले महसूस किया होगा आपने कि खासकर 2-3 साल से जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये काफी चर्चा में है। जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि प्रदूषण की समस्या बढ़ती चली जाएगी, एनजीटी चर्चा के केंद्र में आता चला जाएगा। बहुत पहले मैंने एनजीटी पर विस्तार से बात की थी, बहुत पहले का मतलब है लगभग शायद 9-10 महीने तो हो गए होंगे। मेरे मन में आया कि एनजीटी पर मैं फिर से बात करूं, फिर लगा कि नहीं, चीजें दोहरी हो जाएंगी, तो अभी फिलहाल मैंने एनजीटी पर बात करने का विचार टाल दिया है। हाँ, मैं आप लोगों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनजीटी, एनजीटी पर आपको अलग से तैयारी करनी चाहिए। अलग से तैयारी करने का मतलब है कि कब इसकी स्थापना हुई, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं और अभी तक इसने क्या क्या हासिल किए हैं, अपने उद्देश्यों में ये कितनी सफल रही है, आपको बकायदे उसकी एक समीक्षात्मक स्थिति अपने दिमाग में रखनी चाहिए और अपना स्टैंड भी ले लेना चाहिए। और साथ ही एक पॉइंट और भी होता है कि एनजीटी अपने को प्रभावशाली बना सके या अपने उद्देश्यों को ज्यादा अच्छे से पूरा कर सके, कामयाब हो सके, उसके लिए आप और क्या क्या उपाय सुझाना चाहेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आधार बनाकर एनजीटी पर हर स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। मित्रों, सवाल यह नहीं है कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं, या इससे पहले पूछा गया है या नहीं, इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको इसे जानना ही चाहिए, क्योंकि जब हम किसी एक टॉपिक पर जानते हैं तो इसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि हम सिर्फ उसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं और हम वहीं तक जानते हैं। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब हम एक टॉपिक के बारे में जानते हैं तो उस टॉपिक से जुड़े हुए दूसरे जो प्रासंगिक टॉपिक होते हैं, जिन्हें पगडंडियां आप कह लीजिए, हम उनके बारे में भी जानते हैं। तो एनजीटी के बारे में नॉलेज रखना एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसका इस्तेमाल आप और भी न जाने कितने दूसरे टॉपिक्स में कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी आपकी फ्रेंड्स होनी चाहिए। दोस्तों न्यूज में और कोई खास नहीं है। मैं यहां आज आपको थोड़ी सी एक अलग बात बताना चाहूंगा जो न्यूज पेपर्स से रिलेटेड है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। मुझे एक क्लिपिंग्स मिली है एक न्यूज़पेपर की और उसमें स्टीफन हॉकिंग्स के कुछ स्टेटमेंट हैं। स्टीफन हॉकिंग्स आप जानते हैं कि कुछ लोग तो उन्हें एक तरीके से आइंस्टीन का आधुनिक अवतार मानते हैं, है ना, जिन्होंने टाइम जैसी किताब लिख करके दुनिया में तहलका मचा दिया है। स्टीफन हॉकिंग्स को आप जानते हैं। उन्होंने अभी अपने भाषण में जो पुर्तगाल में हुआ है लिस्बन में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और ये जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं मित्रों मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि ये बातें भले अभी कही गई हों, एक दो दिन पहले कही गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक उनकी ये बातें कोट की जाती रहेंगी। तो मैं चाहूंगा कि उनके इस स्टेटमेंट को आप नोट भी कर लें क्योंकि इन दोनों का संबंध ऐसी समस्याओं से है जिसका हल फिलहाल इतनी जल्दी तो नहीं होने जा रहा है। समस्याएं बड़ी लंबी हैं और जब तक समस्याएं रहेंगी तब तक स्टीफन हॉकिंग्स का यह उद्धरण या कथन भी प्रासंगिक रहेगा। मित्रों जो सबसे पहली बात उन्होंने कही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कही है जिसको हम कृत्रिम बौद्धिकता बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसके ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कि अभी जब हमारे यहां 15 दिन की क्लासेस चल रही थी तो उस पर मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में अलग से आपको 15-17 मिनट का प्रोवाइड किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में स्टीफन हॉकिंग्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्द आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो न्यूज़पेपर में छपे हैं ताकि आप उसी के आसपास उसे नोट कर सकें। उन्होंने कहा है फ्रेंड्स कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। मैं कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी सभ्यता के इतिहास की सबसे खराब घटना के तौर पर याद किया जाएगा। देख रहे हैं, सबसे खराब घटना के तौर पर याद किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी के सामने इसके इस्तेमाल को लेकर बड़ी चुनौती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखने के साथ साथ इससे मानवता को हो सकने वाले संभावित खतरों के बारे में भी सीखें। मैं फ्रेंड्स रिपीट कर रहा हूं, इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखने के साथ साथ इससे मानवता को हो सकने वाले संभावित खतरों के बारे में भी सीखें। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी धरती को तबाह कर देने की ताकत है तो साथ ही बड़ी बीमारियों को सही करने की भी क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में इंसानों को ही रिप्लेस कर सकती है। देखिए कितने खतरनाक भविष्यवाणी वो कर रहे हैं और मानव सभ्यता के विनाश का आधार इसको बताते हुए वो चुनौती भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, राइट। ये उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा है, आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने कही है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर कही है, राइट। देखिए वो जलवायु परिवर्तन के लिए वो क्या कहते हैं, दूसरी बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है। आबादी और प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है 600 साल में धरती आग का गोला बन जाएगी। 600 ईयर्स, 600 साल में धरती आग का गोला बन जाएगी। साफ कहूं तो हमें अब उन जगहों पर जाना होगा जो आज तक अछूती रही हूं। देख रहे हैं? हमारे सोलर सिस्टम से जो भी तारे पास में हैं, वहां पहुंचने के बारे में वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए। अल्फा सेंचुरी इसका उदाहरण है जो धरती से 4.37 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही है। अभी हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं, उनसे ये दूरी तय करने में काफी वक्त लग जाएगा। जो स्पेस एजेंसी सक्षम है उन्हें नैनो क्राफ्ट जैसा कुछ तैयार करना होगा जो इस दूरी को 15-20 साल में तय कर सके। मैं आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से भी अपील करता हूं कि वो इस दिशा में निवेश कर स्पेस एजेंसियों की मदद करें। मित्रों ये स्टीफन हॉकिंग्स के वक्तव्य हैं। आप देखिए कि दोनों के दोनों वक्तव्य सच पूछिए तो बहुत ही चिंता पैदा करने वाले हैं और डरावने भी हैं, डराने वाले भी हैं, और ये झूठ नहीं है, एक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए वक्तव्य है ये। है ना, ये ज्योतिष के द्वारा की गई भविष्यवाणी नहीं है। अब आप सोच करके देखिए फ्रेंड्स कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसे हम नहीं संभाल पा रहे हैं। अब एक ही तरीका है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएं और पता लगा कि उस ग्रह का भी हम यही हाल कर देंगे। क्या पता है अगर हम ये सब चीजें लेकर जाएंगे तो उसे भी क्या छोड़ेंगे। तो मित्रों खैर, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य जो स्टीफन हॉकिंग्स के हैं मैंने आपको बताए हैं, और ये ऐसे हैं जो लंबे समय तक आपको काम आते रहेंगे, और ये दोनों आज के विश्व की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए वक्तव्य हैं, ये आपको नोट कर लेने चाहिए। फ्रेंड्स, आखिरी में एक छोटी सी जानकारी, आपने न्यूज में, रेडियो न्यूज में सुना होगा कि आज चर्चा का विषय है कि अंतर्गत काला धन समाप्त करने के उपाय के बारे में चर्चा होने जा रही है, यानी ब्लैक मनी को कैसे खत्म किया जाए, राइट। तो एक अच्छा डिस्कशन होगा ये, मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप इसे सुन सकेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद ये हो सकता है। फ्रेंड्स आइए अब मैं आता हूं मुख्य परीक्षा 2017 पर। इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा फ्रेंड्स कि जिस तारीख को आप सब मुख्य परीक्षा देने जा रहे थे उस दिन मैं आप सबको शुभकामनाएं नहीं दे सका, क्योंकि मैं यहां अपनी कक्षाओं में 15 दिन की कक्षाओं में व्यस्त था और उस दिन जो कुछ भी आपने सुना होगा वो प्री रिकॉर्डेड था। चलिए मैं वो अवसर खो चुका हूं कि मैं आपको शुभकामनाएं दूं, लेकिन डेफिनेटली अब मैं आपको इस तरह की ईश्वर से प्रार्थना तो कर ही सकता हूं कि आप जो कुछ भी करके आए हैं उनके अच्छे परिणाम प्राप्त हों। फ्रेंड्स चूंकि एक बीच में कुछ दिनों का गैप हो चुका है, लेकिन फिर भी ये विषय ऐसा है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। जब तक अगली परीक्षा नहीं हो जाए तब तक तो यह विषय पुराना नहीं है, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा अवसर देखकर, क्योंकि न्यूज में कुछ खास नहीं है, इस विषय को चुना है। आज मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा पर बात की तय करना अपने आप में इतना व्यापक होता है, इतना विश्लेषणात्मक होता है कि कई दिनों तक इस पर बात की जा सकती है, और समय समय पर मैं ऐसा करता भी रहूंगा। मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही सामान्य सी बात इस बार के परीक्षा की बताने जा रहा हूं, और फ्रेंड्स वो बात यह है कि इस बार के जो पेपर्स हैं, खासकर अगर हम जनरल स्टडीज के चारों पेपर्स को ले, मेरा कंसर्न इन्हीं से ही होता है जब मैं मुख्य परीक्षा की बात करता हूं। निबंध आप जानते हैं जो अनिवार्य है वो बड़े आसान से ही होते हैं, उसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत होती नहीं है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी वो क्वालिफाइंग होते हैं, और ऑप्शनल की बात करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हर ऑप्शनल का अपना अपना करेक्टर होता है और उस पर और उन पर उसी करेक्टर उन्हीं के करेक्टर के आधार पर बात की जानी चाहिए, जो सच पूछे तो डेली ऑडियो लेक्चर में करना संभव नहीं है। इसलिए जब भी मैं मुख्य परीक्षा 2017 की बात करूं तो आप इसे जनरल स्टडीज के चारों पेपर तक सीमित करके देखें। फ्रेंड्स पहली बात तो यह है कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं लेकिन जो 2018, 2019, 2020 में प्लान कर रहे हैं, देखिए मैं 2020 तक की बात कर रहा हूं, उन्हें चाहिए कि वो जनरल स्टडीज के चारों पेपर्स को इस साल के देखें। यहां तक कि जो अगर 21 और 22 का भी प्लान कर रहे हो तो भी वो इन पेपर्स को देखें। ऐसा नहीं कि ठीक है हम तो 2-3 साल के बाद बैठेंगे तो अभी हमें इसकी क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि यह सोचना एक तरीके से सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने की एक आरंभिक गलती हो जाएगी। आप सबको उन पेपर्स को देखना चाहिए और बड़े इत्मीनान के साथ देखना चाहिए, और साथ ही उस पेपर को देखने के बाद आतंकित नहीं होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो भी आतंकित नहीं होना चाहिए। आतंकित शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं फ्रेंड्स कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमने कभी सुन नहीं रखे हैं, अखबारों में भी नहीं पढ़ा है, फिर हमें लगता है कि यार हम इसे कैसे हल करेंगे, ये तो हमसे हल नहीं होगा, इसका मतलब है कि हम डिजर्व ही नहीं कर सकते, हम तो क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, ऐसा लगने लगता है जो सच नहीं है। इसीलिए पूरे इत्मीनान के साथ आप अनसॉल्व्ड पेपर्स देखें। देखने के बाद एक चीज आप महसूस करेंगे, एक अनुभव आपको होगा, वो ये कि इस बार के जो मेंस के पेपर हैं वो अपेक्षाकृत जो इससे पिछले पेपर्स रहे हैं उनकी तुलना में आपको सरल लगेंगे, और ये आपका हौसला बढ़ाने वाला होना चाहिए। सरल मित्रों 2-3 तरह से, मतलब ये नहीं कि केवल प्रश्न की दृष्टि से ही सरल है, टॉपिक की ही दृष्टि से सरल है, कई तरह से सरल है। पहली बात आप देखेंगे कि जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, जिन पर प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको जाने पहचाने से लगेंगे, बहुत अजूबे से टॉपिक नहीं है। इससे पहले कि आप प्रश्न पत्र उठा करके देखें तो उसमें कुछ टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अटपटे से लग सकते हैं या लगेगा कि ये बिल्कुल नया है, इसके बारे में तो हमने कहीं सुना ही नहीं है, कहीं पढ़ा ही नहीं है। इस बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि प्रश्न पूछने का जो स्वरूप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कुछ स्ट्रेट है, काफी कुछ स्ट्रेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रेट है, नो डाउट कि वो यूनिवर्सिटी में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर कुछ बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज को हम छोड़ दें तो सामान्यतया जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे वो गहरे हैं, विश्लेषणात्मकता की मांग करते हैं, एनालिटिकल दृष्टि के बिना आप उन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो उतने जटिल नहीं है जितने जटिल 2013 के प्रश्न रहे हैं। एक बात इन प्रश्न पत्रों को देख करके बहुत साफ समझ में आती है फ्रेंड्स, और वो ये कि 2013 से ये नया पैटर्न लागू हुआ है और हम 2017 के ये पेपर्स देख रहे हैं, तो ये जो 2013 से 2017 के मुख्य परीक्षा की जो यात्रा है वो सच पूछिए तो सरल होते जाने की यात्रा है। लगातार पेपर सरल होते जा रहे हैं, लगातार टॉपिक की दृष्टि से भी और नो डाउट कि क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर की दृष्टि से भी। तीसरा है फ्रेंड्स एनालिसिस, किस तरह की एनालिसिस। आप देखेंगे कि 2013-14 में जो एनालिसिस दिया गया है वो काफी कुछ वेग किस्म का है, अस्पष्ट किस्म का है, लेकिन 2017 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस भी समझ में आती है, पकड़ में आती है, वहां अस्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी प्रश्नों के उत्तर देने में, बावजूद इसके कि वो जान रहे हैं, उन्हें स्पष्ट नहीं हो पाता था कि इसमें हम क्या लिखें और क्या छोड़ें, वह अस्पष्टता इस बार गायब हो गई है। तो फ्रेंड्स ये तीन बातें मैंने आपके सामने अभी मुख्य परीक्षा 2017 के पेपर्स को लेकर रखी हैं। इस पर समय समय पर हम लोग आगे भी बातचीत करते रहेंगे, फिलहाल चूंकि वक्त हो चला है तो अपनी बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। जहां तक मित्रों न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, वो आप अपने अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। और अब हम सीधे आते हैं ईमेल पर, बहुत से ईमेल लिखे मिले हैं और इनमें सबसे ज्यादा ईमेल मैं देख रहा हूं कि हमारे उन दोस्तों के हैं जो अभी अभी यहां से क्लासेस करके गए हैं। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उनकी उत्सुकता जिज्ञासा जुड़ाव को महसूस कर सकता हूं और उनके इस प्रयास का सच पूछे तो पूरी तरह से अभिनंदन भी करता हूं कि वो मेल लिखकर अपने भावों से हम सबको अवगत करा रहे हैं। मित्रों मेरे पास अभय चौहान का मेल आया, उसमें उन्होंने लिखा कि उनकी मां ने मैडम से बात की और फीडबैक दिया। उन्हें थोड़ा सा संकोच हो रहा था कि मां ने बात की तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो गया है। अभय बिल्कुल मत सोचो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपकी मां ने मैडम से बात की। आपकी मां को हम लोगों का नमस्कार कहिएगा और कतई मन में मत लाइए कि कुछ आपने गलत किया है, सवाल ही नहीं उठता है। वो हमारे लिए आपसे भी ज्यादा अभिनंदनीय है, ज्यादा आदरणीय है, उन्हें मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एक फ्रेंड है दोस्तों अभय सिंह दरभंगा बिहार से, उन्होंने अभी एक जो आठवां बैच हमारा फरवरी मार्च में होने जा रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्होंने पूछा है कि सर क्लास में आने से पहले हम क्या तैयारी करके आएं। तो अभय के माध्यम से मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं कि अभी आपको तैयारी करके आने की कोई खास जरूरत नहीं है, अभी तो आप अखबार पढ़ते रहिए, न्यूज सुनते रहिए, डेली ऑडियो लेक्चर सुनते रहिए, थोड़ा बहुत उन पर विचार करते रहिए, प्रेस क्लिपिंग्स थोड़ी बहुत देखते रहिए। इनफैक्ट जो 15 दिन की क्लासेज होती हैं होती ही इस बात के लिए कि हम आपको बता सकें कि आपको पढ़ना कैसे है, तो वो चीज तो हम यहां आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन आप इनके साथ अपनी कंटिन्यूटी को लगातार मेंटेन करके रखें। तो मित्रों अजय चौहान और अभय सिंह के बाद अब मैं दूसरे मित्रों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं। उसमें है रामचरण बैरवा टोंक राजस्थान से, विनोद यादव, आनंद लभानिया, संजीव कुमार, इरफान पठान, संतोष कुमार, संजय गौतम हिमाचल प्रदेश से, सचिन अड़गांवकर अकोला महाराष्ट्र से, सुभाष इराकर बेलगवी कर्नाटक से, मनीष सिकरवाल बाराबंकी से, शुभम सिंह दोहरे इटावा उत्तर प्रदेश से, मनिंद्र शाही, शुभम उपाध्याय और श्वेता राज, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके साथ ही उन मित्रों का भी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जिनके मेल मैंने पूरे ध्यान से पढ़े हैं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।